अलामते क़यामत का बयान। आज हम इसमें से अगले टॉपिक पे चलेंगे, और इससे पीछे वाला जो हमारा टॉपिक था वो फितनों से मुतल्लिक था। बुनियादी तौर पे हम अलामते क़यामत में से अलामते सुग्रा देख रहे हैं, और पीछे जो कि बहुत सारे फितनों का जिक्र आया था, तो उसके बाद हमने फितनों ही का टॉपिक किया कि जिसमें फितनों के मामले में क्या होगा। आज हम पेज 162 से अलजुजुल सानी यानी किताब का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, जिसमें अब हमें आहिस्ता आहिस्ता वो अलामतें दिखेंगी कि जिसका ताल्लुक नबी सल्लम की पेशन गोइयों से है। सबसे पहली चीज़ इसमें जो शुरू में है वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और आपकी वफ़ात। बेसत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ातुहु यानी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक और वफ़ात, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो पिछले अम्बिया कराम जब भी दुनिया में आते रहे उन सब ने अपनी कौमों को जो क़यामत की निशानियाँ बताई थी उसमें ये निशानी थी कि क़यामत से पहले आखिरी नबी दुनिया में आएंगे। तो गोया के अल्लाह के नबी का दुनिया में आना इस बात की दलील है कि अब वाकई क़यामत करीब है, और इसका एक और मफहूम भी है कि अब इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है, इसकी दलील देखते हैं। हज़रत साहल रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेसत और क़यामत दोनों इस तरह से करीब हैं। फिर इसके बाद आपने अपनी दोनों उंगलियों यानी कलमा शहादत और दरमियानी उंगली को ऊंचा करके इशारे से बताया। इसे बुखारी ने रिवायत किया इस तरह से, ये देखिए ये शहादत की उंगली होती है ना, और ये दरमियानी उंगली है, इसको यूं करके दिखाया यानी ये जो चीज़ है। अगली रिवायत में एक और भी है, उसको दोनों को जमा करके फिर हम इस पर देखते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेसत और क़यामत दोनों इस तरह से हैं जैसे कि ये दोनों उंगलियाँ। ये मुस्लिम की रिवायत है। अब इसको देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि दोनों उंगलियों से क्या मुराद है, तो इस पे उलमाए कराम ने, ये देखिए एक उंगली यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना और दूसरी शुरू हो रही है। बास कहते हैं कि इससे मुराद ये कि ये है नबी सल्लम की आमद, तो ये है क़यामत। ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ना दोनों, ये दोनों हिस्से जो हैं ये मिल गए, ये दौर ज़िंदगी का गुजर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह के नबी की बेइज्जती थी, तो अब बस दुनिया में इतना सा हिस्सा रह गया, एक तफसीर ये है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों उंगलियों का यूनाइटेड हिस्सा कितना है और इन दोनों उंगलियों का ऊपर से छोटा बड़ा हिस्सा कितना मामूली सा। बस कहते हैं इससे ये मुराद है। कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि नहीं, दो उंगलियों से मुराद है कि जैसे इन दो उंगलियों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं है, राइट, इस तरह। तो फिर इससे मुराद है कि नबी सल्लम और क़यामत के बीच में कोई और तीसरी चीज़ नहीं है। ठीक है, दोनों को देख लीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा कुर्बे क़यामत की अलामत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक भी कुर्बे क़यामत की अलामत है। रिवायत है इब्ने माजा में, हज़रत औफ बिन मालिक अल अशजई कहते हैं, मैं ग़ज़वे तबूक के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप चमड़े के खेमे में तशरीफ़ फरमाते, मैं खेमे से बाहर सहन में बैठ गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औफ अंदर आ जाओ। मैंने अर्ज़ किया, खेमा तो छोटा है। यहाँ से नोट कीजिए कितना छोटा खेमा था कि एक के बाद दूसरे के आने की जगह नहीं। हम कैसे गिले करते हैं कि हमारे घर छोटे हैं, हमारे कमरे छोटे हैं। दुनिया का बेहतरीन इंसान जब इतनी छोटी जगह पे बैठ के खुश है, तो हमें अपने बारे में क्या सोचने की ज़रूरत है। खैर, आपने इरशाद फरमाया कि आमद से पहले 6 निशानियाँ याद रखना, जिनमें से एक मेरी वफ़ात है। इस इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो अब आप देखिए कि इन दोनों रिवायतों को सामने रखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है दुनिया में, और उसके बाद फिर आपका तकरीबन 65 ईयर्स रहना और फिर दुनिया से रुख्सत हो जाना, ये दोनों अलामतें गुजरे हुए भी आज कितने साल हो गए। अब हम इस पे बात करते हैं। 1435 ईयर्स गुजर चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए, 10 साल उसके ऊपर और लगा लीजिए तो 45 ईयर्स हो गए, यानी तकरीबन 1450 साल हो गए हैं इस बात को कहे हुए सुने हुए कमोबेश के अल्लाह के नबी के बाद क़यामत आ जाएगी। तो अब तो और करीब आ गई ना, समझ रहे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क़यामत जितनी करीब थी, अब उससे तक 1450 साल और करीब हो गई। तो हमें नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। बहुत ही खूबसूरत रिवायात हैं सूरत अलम्बिया की तफसीर में, अक्सर मैं लिखाया करती हूँ, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफलत मोरिदून। पहली आयत है सूरत अम्बिया की भी और 17वें पारे की। جس کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ لوگ ابھی تک غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور روایات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں, جس میں اس سے ایک روایت کیا ہے کہ اگر کوئی کپڑا بیچ رہا اور گاہک کو کپڑا دینے سے پہلے کاٹتا ہے نا, پورا کپڑا کٹ چکا ہے, صرف کنی کا ایک تار بچ گیا. کبھی سوچے, پاکستان میں کبھی شاپنگ کی ہوگی تو تھان میں سے جب وہ پھاڑ کے دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سارا کپڑا ایسے ہی وہ ایک دم پھاڑ لیتے ہیں, لیکن جو کنی کا تار ہوتا ہے اس کو ایک جھٹکے سے کاٹنا ہوتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا وہ دور جو گزر چکا ہے وہ اتنا ہے جو پورے کا پورے تھان کا عرض کٹ گیا ہے, لیکن صرف ایک کنی کا کپڑا ہے سائڈ کا وہ بچا ہوا ہے. اتنی قیامت قریب ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ جب قیامت اتنی قریب ہے تو کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے؟ قیامت کی. دیکھیے, جو بھی کام ہوتا ہے ہم سب اس چیز پہ اپنے عمل کو دیکھتے ہیں کہ جس کام کی ہم تیاری چاہے مہینوں پہلے سے لگے ہوں, پھر کام کا وقت قریب آ گیا ہو تو کیا ہم فارغ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ آخری دنوں میں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ کیا ہی نہیں ہوا اور تیاریاں کرتے ہیں. تو کیا ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں کہ جتنی قیامت قریب آ رہی ہے, اور چلے مجموعی قیامت دنیا کی ہو سکتا ہے ابھی کئی سو سال نہ آئے, لیکن ہماری اپنی موت. اذا مات الانسان قامت قیامته, حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو کیا ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا ہم نے اس دنیا میں اتنے اچھے کام کر لیے ہیں کہ اگر آج ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم سرخرو ہو کے مریں؟ اور آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس چیز سے انکار کر سکتا ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قیمت ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے, بیکار بیٹھے رہتے ہیں, ایسے کیا کروں, اخبار پڑھتے رہے, خبریں سنتے رہے, ٹاکنگ, فون کال ہماری ایک 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 گھنٹے کی ہو جاتی ہے سم ٹائم. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم لوگ گوسپ میں پڑ جاتے ہیں, ایک ایک پارٹی پہ کئی کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم اور بھی نیکیاں کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. مثلا آپ دیکھیے نا کہ آپ کام کر رہے ہیں, گھر کا کام کرتی ہیں, آپ کھانا بنا رہی ہیں نا, تو نیکی کا کام ہے, لیکن آپ کے کان خالی ہیں, زبان ذکر سے خالی ہے. زبان سے کوئی ذکر کر لیں تو نیکی بڑھ جائے گی نا, کانوں سے کوئی اچھی چیز سنیں گے تو آواز آئے گی نا. بعض بات دیکھیے, بعض کیا ہمیشہ ہی ہم سب الحمد للہ نمازیں پڑھتے ہیں نا, اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں, ڈیلے کر کے پڑھ رہے ہیں, تو نماز کا فرض تو پورا ہو گیا. لیکن اگر سارے وقت پہ فوراً نماز کے ابتدائی وقت میں مل کے ادا کر لیں تو بر وقت نماز کا بھی اجر ہو گیا, جماعت کی نماز کا بھی اجر ہو گیا. تو ہم سب اس بات کو سنتے وقت اپنے سے یہ عہد کریں کہ ہم نے تھوڑے سے وقت کو غنیمت جان کر اب زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہے. جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت انسان کو اسی چیز کی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کیے ہوتے جو آج میرے کام آتے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے. تو ہم سب اپنا محاسبہ کرتے جائیں اور وقت کا صحیح استعمال کریں. دیکھیے, گیٹ مور فرام لائف, زندگی سے زیادہ حاصل کریں. اس معاملے میں قناعت بالکل اچھی نہیں کہ چلو کچھ تو نیکی کر رہی ہوں نا, اب اور کیا کروں, چلو نماز تو پڑھ لی ہے. ہمیشہ نیکیوں کو ڈھونڈیں. ایک میں نے بڑی خوبصورت سی تعریف ایک سال لکھائی تھی دور قرآن میں غالباً, کہ تقوی یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو گناہ کے مواقع دکھنے لگیں اور اس سے بچ جائیں. عموماً ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ تقوی کیا ہے, کہ گناہوں سے بچ جاؤ. حالانکہ تقوی یہ بھی ہے کہ نیکی کے مواقع نظر آنے لگیں اور پھر اس کو بسم اللہ کر کے لے لیں. ہمیں نیکیوں کے کتنے موقع ملتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے ہم بہت دولت مند ہیں. نہیں, وی ہیو اے لاٹ, بہت ساری نیکیاں. وہ ایک بچہ تھا نا, تو ماں نے اس کو رغبت دلائی کہ تراویوں کی بات پتہ نہیں انہوں نے کہیں پڑھی ہوگی, میں نے تو خیر نہیں پڑھی, کہ جو تراویاں پڑھتا ہے دو تراویاں تو اس کو جنت میں محل ملتا ہے نا. تو ایک آدھا دن وہ ینگ بچہ تھا, اس نے پڑھ لی. جب تیسرے چوتھے دن ماں نے کہا کہ بیٹا پڑھ لو تراویاں, کہیں گا نہیں مجھے اور محل نہیں چاہیے. تو بچوں کے حوصلے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی سی چیز سے خوش بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی اداس بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے لیے اس چیز کو گول بنانا ہے کہ کبھی بھی نیکی سے بندے کا دل نہ کم ہو. کیا پتہ کوئی ایک ایسی نیکی جس کو آج میں بہت ہلکا جانتی ہوں یا میں جانتا ہوں, ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کل وہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی آپ لوگوں کا ایک نمبر سے گریڈ رہ جاتا ہے؟ پوزیشن ہولڈرز میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہوتا, ایک بلکہ آدھے آدھے نمبر سے پوزیشنز چینج ہو جاتی ہیں. تو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت ہی زیادہ हसरत का ज़रिया होंगी। फिर अगला टॉपिक है क़यामत के कुर्ब की निशानियों में शक्कुल कमर, जान का फटना। अहद नबी में जान का फटना कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है। सूरत कमर की आयत नंबर 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्तरबतिस्साअत वन्शक्कल कमर। क़यामत करीब आ पहुँची और चाँद फट गया। इसी तरह बुखारी की रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अहले मक्का ने रसूल अकरम से कोई निशानी मांगी, आपने इन्हें चाँद का फट जाना दिखाया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब ये कब हुआ था? आप ये तो जानते ही हैं कि मक्की दौर में नबी सल्लम पर ईमान कम था, लोग आपको सच्चा नबी नहीं समझते थे। तो एक ऐसा मौका हुआ कि जब आपने उनको किसी बात की खबर दी तो कहने लगे, अगर आप सच्चे हैं ना तो फिर हमें निशानी दिखाएं। काचा भी क्या निशानी हो? कहने लगे कि ये चाँद जो है ये दो टुकड़ों में फटे, यानी एक टुकड़ा इधर हो जाए एक उधर हो जाए, फिर हम आपको मानेंगे। आप देखिए, इससे बहुत बड़ी निशानी कुरान पाक की सूरत में दिन रात उनके ऊपर आ रही थी। दुनिया में सबसे बड़ा मुजज़ा कुरान पाक है, जो 1400 साल गुजर गए और उसके बावजूद भी आज तक ख़त्म नहीं हुआ और ना उसमें कोई तब्दीली हुई है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना और बहरहाल फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उंगली से ऐसे इशारा किया था तो चाँद एक सफ़ा के पहाड़ की तरफ और दूसरा मरवा की तरफ हो गया। एक मुख्तसर सा वक्त था। अगर आप इसकी आज के दौर में दलील देखना चाहें तो ये देखिए, हमारे वेबसाइट पे ही प्रेजेंटेशन का जो आइकॉन है, कल भी आपको दिखाया था, तो इसमें आपको ये 33 नंबर का प्रेजेंटेशन दिखेगा, मून सप्लिट। तो आज भी साइंसदानों ने चाँद पे जाकर देखा तो उनको चाँद के बीच में एक दरार दिखती है। ये देखिए, ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ टूट के जुड़ती है। कभी आप लोगों ने पहले दौर में देखा होगा, लोग कपों की जो हैंडल्स थे टूट जाते थे, फिर उसको एल्फी लगाते थे। अब तो है ही इतना कि परवाह ही कोई नहीं, पहले तो लोग उनको भी जोड़ जाड़ लेते थे, तो उसमें एक निशान सा रहता है। तो ये देखिए तस्वीर, ये इसमें इन्होंने पूरा लिखा है कि ये तस्वीर बताती है, इसको रॉकी बेल्ट कहते हैं, कि चाँद एक दफ़ा टूटा था और मक्का के जो लोग थे उन्होंने अल्लाह के नबी से ये मुतालबा किया था। क्योंकि देखिए, उनके दिल नहीं मानते थे कि ये नबी कैसे हो सकता है, इसको तो हमने अपनी ज़िंदगी में खाते पीते उठते बैठते देखा है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की नबूवत साबित की। ये देखिए, ये है वो लोकेशन जहाँ से चाँद टूटा था, और इस तरह से जैसे सर्कल को हाफ किया जाए ना उसकी जगह पे से। फिर इसी तरह ये जो है सेमिनार था, उसकी डिटेल्स यहाँ पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हैं। तो अल्लाह ताला आज नॉन मुस्लिम्स को ये दिखाता है इस्लाम की सच्चाइयाँ कि ये सब कुछ हुआ था और होके रहेगा। तो बहरहाल ये कि हम सबको अपने आप को इस बारे में यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लम की इस बात पर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा जी इतनी बड़ी बात थी तो फिर ये रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है, या जी लोगों को क्यों नहीं पता। तो इसके बहुत सारे, इस पर मैंने एक दर्स भी दिया था, और जब हम ये सूरत पढ़ाते हैं तफसीर में तो आप बल्कि अगर चाहें इसकी डिटेल सुनना तो सूरत कमर की पहली आयत की तफसीर सुन लीजिए। तो उसमें सब बताया गया था कि ये चंद सेकंड के लिए हुआ था, और सिर्फ जो मक्का में आपके इर्द गिर्द लोग खड़े थे उन्होंने ये चीज़ देखी थी। क्या हर वक्त लोग बाहर चाँद को देख रहे होते हैं? सिर्फ चंद लोग जो उस वक्त आपके सामने मौजूद थे उन्होंने देखा, या रास्ते में काफिला जा रहा था उसने देख लिया? तो लोग भी थोड़े से थे, थोड़ों ने देखा, ना लिखते थे ना पढ़ते थे। और इस्लाम इस तरह से यादगारें नहीं कायम करता, बस एक निशानी थी दिखाती, जिसको माननी थी उसने मान लिया। और जिसने देखिए नबी के कुरान को पढ़ के ईमान नहीं रखा अल्लाह के नबी पर, फिर वो जान को फटता देख कर क्या करेगा? माँ के पेट से बच्चा निकलता है, कितना अनयूजल मामला, क्या लोग इसको देख कर आपको नहीं पहचान सकते? क्या कुछ नहीं होता, जानवरों के पेट से दूध निकलता है, इतनी अनयूजुअल चीज़ें हम हर रात दिन देखते हैं। फलों में से शगुफे फूटते हैं, गुठलियों में से कैसे पौधे उगते हैं, एक आप देखिए बीज ज़मीन में जाता है और उसकी नतीजे में कितनी फूलों की क्यारी बनती है। अक्सर जब वॉक करते हैं, जब तो मैं देखती हूँ तो मैं ये पूछती हूँ कि ज़मीन में पिंक कलर किसने डाल दिया था, ऑरेंज किसने डाला? लोग कहते सीड में, सीड में कहाँ से आया? काले रंग का सीड था जो आपने डाला, वो जीन्स, अब जीन्स किसने बनाए, इसका कोई जवाब नहीं है। तो बस दफ़ा साइंस की तरक्की हमारे और अल्लाह के बीच में कायल हो जाती है, लेकिन बहरहाल ये हुआ। अगली अलामत है क़यामत की अमवातुल उलमा, उलमा की मौत होगी। क़यामत के करीब उलमा की मौत कसरत से होगी, यानी उलमा की अमवात कसरत से होंगी। जाहिल लोग मुफ्ती बनकर लोगों को गुमराह करेंगे। अल्लाह मला तचलना मिनहुम। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कभी ना करे कि जो जहालत की बुनियाद पर लोगों के साथ ऐसे मामले करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला दीन का इल्म बंदों से छीन कर ख़त्म नहीं करेगा। यानी ये नहीं होगा कि लोगों से इल्म चला जाएगा, इल्म होगा, बल्कि उलमा की मौत से इल्मे दीन ख़त्म करेगा, हत्ता कि जब तक एक भी आलिम नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना रहनुमा यानी सरदार बना लेंगे, इनसे मसले दरियाफ्त किए जाएंगे और वो बग़ैर इल्म के फतवे देकर खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। क्या आपको लगता है आज वो वक्त है? बास दफ़ा लोग ऐसे ऐसे फतवे पूछ के आते हैं, सुन के आते हैं और अकल दंग हो जाती है कि ये कहाँ से सुना है। तो याद रखिए कि अल्लाह से बहुत दुआ की ज़रूरत है। मैं जब भी ऐसी कोई रिवायत पढ़ती हूँ तो मेरा अपना दिल बहुत धक धक करता है कि अल्लाह हम भी लोगों को इल्म देने की कोशिश में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इल्म की जगह जहालत फैला दें। कैसे पता चले कि कोई आपको इल्म की बात बता रहा है कि जहालत की? देखिए, जहालत की पैदावार ये होती है कि उनके पास दलील नहीं होती, बस ये कह दिया, बस चुप करो, आगे से नहीं बोलते, पूछते नहीं हैं, हमारे बड़े ये करते थे। ख्वाहिशात होती हैं दूसरी वजह। जहालत से जो इल्म फैलाया जाता है उसमें अमूमन लोगों की ख्वाहिशात की रियायत होती है, लोगों को उनकी पसंद के फतवे मिलते हैं, मर्जी के। फिर ऐसे लोग अमूमन नजराने, तोहफे, तहाइफ के नाम पर इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि जिससे लोग भी खुश रहते हैं, ये भी खुश रहते हैं। इसके बरक्स जो इल्म की बुनियाद पर इल्म फैलता है, सबसे बड़ी उसकी पहचान ये है कि वो वक्त और माशरे के ख़िलाफ़ होता है। लोग ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे होते हैं। हर दौर में दो दीन साथ चलते हैं, हुदन हिदायत का दीन, गाइडेंस का दीन, और हवा ख्वाहिशात का दीन। तो जो इल्म की बेस पे होती है ना बात, उसमें अमूमन लोगों को खुशी नहीं होती। मिसाल आपको देती हूँ कि जैसे अब हमारे कल्चर में एक चीज़ आम है, कोई मौका आता है, खूब खाओ पकाओ, हलवा बांट दो, मिल के कुछ पढ़ लो, पढ़ा लो, एक रात जागो, कुछ बातें सुनो, नाते सुनो, तो ख़त्म। अब ये दीन कितना आसान है ना, महीने में, साल में एक दो बार ऐसी महफिल मुनक्कद की, खाने खिला दी, अब इसके बाद अब जो मर्ज़ी करें, आपको कोई ना पूछे, अब ये आसान है। तो इसकी जगह अगर कोई आपसे कहे कि हफ्ते में 4 दिन आप बेबे मैनर में आइए और 4 घंटे पढ़िए, तो लोग कहते हैं ये कौन सा दीन है कि औरतें भी पढ़ने लग जाएं इतने घंटे घर बैठो। जैसे एक सिस्टर थी तो उसने कहा कि उनके घर में किसी ने कहा कि तुम कहाँ पढ़ने जा रही हो, घर बैठो बच्चे पालो, तुम्हारा क्या काम है जाने का। तो वो थोड़ी इस पर परेशान हो गई कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें बताइएगा कि हम यही सीखने जा रहे हैं कि बच्चे कैसे पालते हैं। आज बग़ैर सीखे बच्चे पाले हुए हैं, तभी तो हमारे अंदर कितनी गलतियाँ हैं ना। तो बहरहाल ये कि इल्म की एक अपनी शान है और अल्लाह ताला हमें जहल से भी बचाए और ऐसे लोगों की इत्तबा से भी बचाए। अगली अलामत है अमवातुल फुजाती, अचानक मौत आएगी, सडन डेथ होगी। क़्यामत से पहले अचानक अमवात के वाक़यात कसरत से होंगे। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़्यामत के करीब पहली रात का चांद बड़ा नज़र आएगा, यानी जब लोग चांद देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लोग उसे दूसरी रात का चांद कहेंगे। मसाजिद को रास्ता बना लिया जाएगा, यानी लोग मसाजिद से गुजरेंगे या ज़्यारत करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, और अचानक मौत आम होगी। ये तबरानी की रिवायत है। इतनी सच्ची बात है ना ये। आप देखिए कि बस तब चांद पर झगड़ें, अभी जब ईद उल अज़हा का चांद दिखेगा, देखिए लोग दो दो ईदें करते हैं, कुछ लोग रमज़ान में रोज़ा रखे होते हैं तो कुछ ने उसे नीत की होती है, फिर अगले दिन चांद के साइज़ पे झगड़े हो रहे होते हैं, कोई कहता है ये पहली का चांद है, कोई दूसरी का। अल्लाह के नबी ने खबर दे दी थी कि आएंगे। फिर आप देखिए कि मस्जिद को रास्ता बना लिया जाएगा, यानी गुजरेंगे, ये फ़लाँ मस्जिद है, ये बादशाही मस्जिद है, ये फ़लाँ है, इवन वह नॉन मुस्लिम्स भी होंगे और लोग इसको एज अ जस्ट टूरिस्ट प्लेस बना लेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। और मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, हम इजिप्ट में थे तो वहाँ इजिप्ट का सबसे, मुझे लगता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा उनका सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो टूरिज्म है। दुनिया से इधर उधर से लोग आते हैं फिरौन और उसकी बाकियात और म्यूज़ियम सबको देखने, इतनी भारी भारी टिकटों पर वो लोगों को रखते हैं। तो मस्जिदें आम जो है ना वो इसी तरह की हालत है। इवन वहाँ मस्जिदों में जब जाएँ तो आपको टोलों के टोले दिखेंगे जो ग्रुप्स बन के आए होते हैं। तो नमाजों के वक्त में बाज़ जो गाइड हैं, जो साथ हैं लोग, वो भी तो मुस्लिम हैं, तो वो बस एक उसको एक रौनक मेले के नाम पे देखते हैं। फिर आप देखिए कि मौत अचानक होगी। आपने देखा, पहले दौर में लोग कहते थे जब कोई मरता था तो आंधी चलती थी, कोई कत्ल होता था तो सुर्ख आंधियाँ चलती थी। अब कितनी आम बात है, आप ख़ुद भी देखिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि किसी की मौत की खबर सुनते हैं लोग, एक लम्हे के लिए थोड़ा सा अफसोस, थोड़ी सी हसरत, और उसके बाद फिर चलो लाओ चाय बना के लाओ, चलो हलवा भी ले आओ। अब वो मौत का सदमा नहीं होता जो पहले होता था। पहले लोग मौत के घर से आते थे, कई कई दिन तक ऐसे अफसुर्दगी और कपड़े ऐसे नहीं पहनने और बात नहीं करनी, और ठीक है उसमें हम नहीं मानते कि ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, शादियां पोस्टपोन हो जाती थी, हर ईद पे सब मिल के रो धो रहे हैं। अब तो ऐसे ही लगता है कि मौत इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये भी क़यामत की अलामत है। बल्कि बाज़ जगह यहाँ तक आता है कि जब ज़िना और बेहयाई आम होगी ना, तो जवानों की मौत कसरत से होगी। और आज भी आप देखिए कि जो बूढ़े हैं ना, खैर से अल्लाह उनको और लंबी उम्र दे, जो 50-60 से ऊपर गुजर गए हैं, यानी मीन जो एक स्टेबल लाइफ है, अब वो सिक्योर है। अल्लाह ताला बूढ़ों को लंबी उम्र दे देता है। इवन बाज़ दफ़ा तकलीफ़ आ जाती है हार्ट की कोई कुछ, लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन यंग्स को हार्ट अटैक हो तो नहीं बचते कुछ। एक तो उसकी वजह फूड है, इतना जंक है, इतनी ज़्यादा ऑयली फूड है, फिर लाइफस्टाइल इतना लग्जरियस वाला है, फिर इतनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान है। पहले हमारे बड़े कितना वॉक करते थे, साइकिलों पे जाना, पैदल चलना, अब मैं कहती हूँ बाथरूम में भी लोग गाड़ी पे जाते हैं। हमारा हाल ये हो चुका है। बच्चे वॉक करने के शायद वही जाते होंगे जो स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं। तो बहरहाल एक दफ़ा गाड़ी हाथ आ जाए, फिर गाड़ी के बगैर बंदा नहीं जाता। तो लाइफस्टाइल को ऐसा रखना चाहिए जिसमें इंसान हेल्दी लाइफ गुजारे। फिर अगली अलामत क्या है? नशरुल इल्मी, इल्म दीन की इशात होगी, यानी इल्म अहम होगा, इल्म कॉमन हो जाएगा, पब्लिश किया जाएगा इल्म। जैसे आज भी आप देखें तो मीडिया फॉर्म में, रिटर्न पेपर, आज नेट ने तो खैर एक धमाका ही मचा दिया ना। पहले तो हार्ड कॉपीज होती थी, अब सॉफ्ट कॉपी है। एक क्लिक करें 1,000 लोगों को ईमेल भेज दें, एक मैसेज करें कितनों को मैसेज चला जाता है। तो ये चीज़ें भी क़यामत की अलामतें हैं। क़यामत से कबल इल्मे दीन की इतनी इशात होगी कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंच जाएगा। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इस्लाम वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक गर्दिशे लैलो नहार पहुँचती है। मुराद है कि पूरी दुनिया में, सारे पूरी दुनिया में रात भी होता है दिन भी होती है ना, तो लैल कहते हैं रात को और नहार कहते हैं सुबह को, और गर्दिश में रोटेशन। अल्लाह ताला कोई मिट्टी का घर या खेमा ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ ये दीन दाखिल ना हो। ये दीन इज्जत वालों की इज्जत में इजाफा करेगा और जलील लोगों की जिल्लत में इजाफा करेगा। अल्लाह ताला इस्लाम के साथ इज्जत वालों और इसके मानने वालों को मजीद इज्जत देगा, और जलील लोगों को अल्लाह ताला कुफर के साथ मजीद जलील करेगा। इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है कि इज्जत वालों को इज्जत देगा और जिल्लत वालों को जिल्लत। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाले कौन है? ईमान वाले। सूरत हुजरात में भी आता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, तो मैं सबसे ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह की नज़रों में मुत्तकी है। ठीक है, तो ईमान की वजह से अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज्जत देगा, यानी ईमान का गलबा होगा। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा घटिया दर्जे पर कौन इंसान है? काफिर। इन शर्र दवाब इंदल्लाहिल्लज़ीना ला युमिनून। काफिर को अल्लाह ने जानवर, बल्कि जानवर से भी घटिया कहा। तो जब वो घटिया हैं तो फिर जाहिर है कि जब इस्लाम आम होगा तो उनको फिर जिजिया देना पड़ेगा, इस्लामिक लॉज को मानना पड़ेगा, तो इस तरह से उनकी जिल्लत होगी। आज आप देख सकते हैं कि नेट ने इस बात को आसान कर दिया। हम मुसलमान वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ नेट के ज़रिए इस्लाम जा रहा है। और एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा कि साइंस की तरक्की ये लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आएगी। आज इस्लाम में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि लोग इस्लाम को फैलता देखकर इसकी तरफ आ रहे हैं, और ये वक्त होगा। तो लेकिन मैं और आप क्या करें? अपना हिस्सा डालें, अल्लाह ताला से ये कहा करें कि अल्लाह ये इस्लाम गालिब तो होना ही है, तो मेरा इसमें हिस्सा डालें। कितना दिल चाहता है ना इंसान का इस बात पे कि अल्लाह ताला तू मुझे इसकी तौफीक दे। चंद दिन पहले हमने एक एक्सपीरियंस भी किया था कि किस तरह से हम दर्स देने गए, और वहाँ पे इंग्लिश लेडी थी जिनको ऑफ कोर्स हमें देखते समझ आ गया कि उर्दू नहीं जानती, और इसी तरह एक और सिस्टर हिंदू थी, बाद में पता चला एक शिया भी थी। तो अब वो हमारे लिए एक बहुत चैलेंज था कि जितने लोग माशाल्लाह कमरा भरा हुआ है, तो अब इन सबको फोकस करें या उस एक को करें? तो ऐसे वक्तों में फिर मुश्किल तो बहुत होता है, क्योंकि जाहिर है जो सुनने आए हैं वो तो उर्दू में सुनेंगे, लेकिन किस तरह लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा डील रहा, और माशाल्लाह वो सब सिस्टर सुन के गईं। तो कहने का मकसद ये है कि दावा का कोई मौका जाने ना दें। ये चीज़ अल्लाह ताला इंसान के दिल में डालता है कि मैंने कहाँ क्या बात करनी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि क़यामत की अलामतों में एक और क्या अलामत है कि ज़हाबुल बरकती, बरकत का उठ जाना। आज बरकत उठी हुई लगती है। अमूमन लोग किस बरकत के उठने की बात करते हैं? वक्त में बरकत नहीं, सेहत में बरकत नहीं, माल में बरकत नहीं, जो खाना लेके आते हैं उसमें बरकत नहीं। बाज़ दफ़ा जो गुरबत में बेचारे लोग मारे होते हैं अपने हमारे मुल्कों में, कहते हैं किलो गोश्त लाते हैं कुछ बनता ही नहीं है, किलो 2 लीटर दूध लिए कुछ भी नहीं बना। बरकत क्यों चली जाती है? आइए इसको देखते हैं। قیامت کے قریب بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوگی لیکن زمین میں کوئی چیز اگائے گی نہیں۔ یہ احمد بزار اور ابو یالہ کی روایت ہے۔ اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ اس پہ تھوڑی سی بات کر کے دیکھیے کہ کس چیز میں برکت ہوتی ہے، یہ لفظ برکت کیا ہے۔ اس کا روٹ اگر آپ دیکھیں نا تو بریک ہے، با را کا۔ برکہ عرب لوگ کہتے تھے کسی جگہ پہ اونٹنی کے بیٹھنے کو، یعنی عربوں میں کسی جگہ اونٹنی کا بیٹھ جانا برکت کی علامت تھی۔ اور عربوں کی ڈکشنری میں بہت کچھ اونٹ اور اونٹنیوں کے اوپر ہے، کیونکہ ان کو دکھتے ہی بہت صحراؤں میں چلتے پھرتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو بڑے بڑے سردار اور عام سب لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہریں، آپ کے ہوسٹ بننا چاہتے تھے۔ آپ نے کیا کہا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وہاں بیٹھے گی۔ اور وہ اونٹنی پھر کہاں بیٹھی؟ بالآخر ابو ایوب الانصاری کے گھر۔ عام مدنہ غریب صحابی تھے، ان کی بیوی کہہ رہی تھی میں اپنے شوہر کی یہ خواہش دیکھتی تھی تو میں یقین نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کبھی ہمارے گھر آئیں گے، آپ سردار ہیں، بڑے ہیں، بڑوں کے گھر میں جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کو یہ آنر دیا نا، تب ان کے گھر برکت اتری۔ اب آپ دیکھیے کہ برکت کا سب سے زیادہ اگر آپ اطلاق دیکھیں نا، تو جس چیز میں اللہ کا نام آ جاتا ہے اس میں برکت آ جائے گی۔ اس زندگی کا ایک اصول بنا لیں، جتنا مال اللہ کے راستے میں دیں گے باقی مال میں برکت ہوگی۔ اسی اصول کے تحت جیسے مال اللہ کے راستے میں دینے سے مال میں برکت آتی ہے، وقت اللہ کے راستے میں دیں گے تو وقت میں برکت آئے گی، صحت اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو صحت میں برکت آئے گی۔ آپ جوانی میں دین کا کام شروع کر دیں، آپ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، یقین کریں۔ آپ اپنی اولاد کو دین پہ لگا کے دیکھیں اللہ کے راستوں میں، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ آپ اپنے گھروں میں دین کا کام شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں وسعت آ جائے گی۔ ہم دین سے دور رہ کر اصل میں اپنی زندگی کو برکتوں سے دور کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی پہلی آیتوں میں اس پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ذات ہے جو بندے کو فرقان دیتی ہے۔ بس اب انسان چھوٹی سی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ میں اکثر ساتھیوں کو دیکھتی ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ چھوٹا موٹا دین کا کام کرا رہا ہے، تو ایک وقت تھا کہ ہم 8-10 ساتھی ہوتے تھے، جب یہ آج بھی جو دیکھیے پیل ٹاک پہ ماشاء اللہ اس وقت بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں نا، اور بھی ہیں۔ شروع میں پیل ٹاک پہ جب کلاس شروع ہوئی تھی شاید 8-10 لوگ بھی نہیں ہوں گے، پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ آہستہ آہستہ ساتھی چلتے گئے ملتے گئے، وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ چلے تھے لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اب ماشاء اللہ اس سے زیادہ ایڈمنز اور اسٹاف کے لوگ ہیں جتنے کبھی کلاسز میں آتے تھے۔ تو یہ کہاں سے آتی ہیں برکتیں؟ کسی کو نہیں پتہ، یہ اللہ کو پتہ۔ یہ لفظ نور القرآن جو آج ہمارے پلیٹ فارم کا نام ہے کہاں تھا؟ یہ تو کورس کا ایک نام تھا، بعد میں سوچا کہ چلو اس کو روم کا نام بناتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ روم کا نام بن گیا۔ پھر روم بنا تو جب کسی بھی آن سائٹ پہ گئے تو وہاں بھائی کیا نام ہے، رجسٹریشنز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نا، چلو جی نور القرآن بن گیا۔ اللہ برکت دے دیتا ہے، ہمیں کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ دین کے کام جو ہوتے ہیں نا، یہ اخلاص پہ چلتے ہیں۔ جتنی نیتیں خالص ہوتی جائیں گی، جتنی اندر عاجزی آتی جائے گی، اور جتنا لوگوں کو نفع دینے کا شوق پیدا ہوگا، برکت آئے گی۔ کس کا سونے کو دل نہیں چاہتا؟ کس کا گھر میں آرام کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ کس کا کھاتے پکاتے موج مستی کرتے دھاپتے کھاتے ملتے نہیں کرتا؟ نفس تو چاہتا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ ہم سب یہی کرنے لگ گئے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو آپ اللہ کے کام کریں، اللہ آپ کے کام کرے گا۔ اگر آپ کو ایک کام سے دوسرے کام کے بیچ میں 15 سے 20 منٹ بھی ریلیکسیشن کے مل جاتے ہیں نا، ویل اینڈ گڈ۔ اور آپ دیکھیں گے سارا دن چستی، سارا دن نشاط۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری صحت، ہمارے وقت میں برکت ہو اور ہم بہترین طریقے سے دین کا کام کر سکیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بارشیں تو بہت ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بارش کی کمی نہیں ہے لیکن فصلوں کی کمی موجود ہے۔ اسی طرح اگلی علامت قیامت کی ہے تقارب الزمانی، تقارب الزمانی، وقت کا جلدی جلدی گزرنا۔ جیسے جیسے قیامت آئے گی ویسے ویسے وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قتل قتل۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے، پہلی بات دیکھیے کہ وقت جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائیں گے، بخیلی دکھے گی۔ یعنی آج اپنی ذات پہ ہم کتنے شوق سے لگاتے ہیں، اپنے نام پہ کتنا لگاتے ہیں، اپنے لباس پہ کتنا لگاتے ہیں، اپنے کھانے پہ کتنا لگاتے ہیں، لیکن بخل کہاں آ جاتا ہے؟ اللہ کے راستوں پہ آ جاتا ہے نا۔ بعض ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، فتنے ظاہر ہوں گے، ہیں آج فتنے، بہت سارے فتنے، اور قتل کی تو کیا ہی بات کرنا ہے۔ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے یاد آ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان تھے تو کسی سواری میں تھے تو پیچھے دو تین آدمی باتیں کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا، اچھا بھائی آج کراچی کے کیا حالات ہیں؟ تو اس دوسرے نے کہا کہ وہ کوئی 15-20 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو کہتے چلو خیر ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ یعنی 15-20 لوگوں کا ایک شہر میں ایک دن میں قتل ہونا، وہ بھائی کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، اتنا قتل عام ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ اسی ابن حبان نے روایت کیا۔ مثال دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی آپ کو بھی تو لگتا ہی ہوگا نا، وقت کتنی جلدی گزرتا ہے۔ آپ کوئی ویکلی کلاس اٹینڈ کریں، ایسے لگتا ہے کہ بس فوراً وقت آ گیا۔ ہم اپنی لائیو کلاسز کی بات کرتے ہیں جب آن سائٹ، تو مجھے ایسے لگتا ہے جمعرات اتنی جلدی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کل پھر جمعرات ہے نا، اور جمعرات سے مجھے ایسے لگتا ہے ویک ختم ہو گیا، اب اگلا ویک منڈے کو ہوگا، ویکینڈ میں ایسے لگتا ہے کہ ویک کا حصہ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ گھنٹے کتنے چھوٹے ہو گئے، ایک فون کال پہ میرے لیے لوگ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ہے ایسی بات۔ پھر اگلی علامت کیا ہے کہ انہار و مروج فی ارض العربی، سر زمین عرب میں نہریں اور ہریالی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ڈیزرٹس ہیں، صحرا ہیں۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا سوچ لیں تو زمزم کا کنواں نکلا تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آرٹیفیشل لیکس۔ آپ یو اے میں جا کے دیکھیے، لیک ویو اور اوشن اور سمندر کے کنارے اس طرح سے پانی، یعنی لوگ آرٹیفیشلی بھی بہت کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، اور بھی چیزیں نکل آئیں گی۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور سر زمین عرب سر سبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں دکھ رہی ہیں ہمیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت سے پہلے سر زمین عرب میں سر سبز و شاداب چراگاہیں اور نہریں ہوں گی، ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا، اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا، اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی، حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل ہے۔ تو بہرحال اب یہ کچھ منظر آ رہے ہیں، آگے ہو سکتا ہے نیچرلی خود ہی زمین سے کچھ پانی کے چشمے پھوٹائیں، جیسے تیل نکل رہا ہے ویسے پانی بھی نکل آئے گا۔ پھر اگلی علامت ہے قیامت کی، کلام الحیوان والجماد، حیوانوں اور بے جان چیزوں کا بولنا۔ حیرت نہیں ہوئی سن کے؟ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ آگے ہم انشاءاللہ اب اگلے ویک سے علامت کبریٰ شروع کریں گے، جو بہت انٹرسٹنگ ہے، جس میں وہ سب چیزیں جو نام ہی ہم نے سنے میں، یاجوج ماجوج اور دجال اور حضرت عیسیٰ کا نزول، تو اسی میں یہ علامت ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن قیامت کے قریب بہرحال ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد یہود کے خلاف جہاد کے دوران پتھر اور درخت کلام کریں گے، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے۔ اس کی حدیث بھی آگے 172 مسئلے میں آ رہی ہے۔ یعنی آخری دور میں یہود کو کہیں پناہ نہیں ملے گی دنیا میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بیل نے بوجھ لادنے پر شکایت کی، اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یعنی یہ ہو چکے آپ کی زندگی میں کہ جانور بولا تھا۔ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने बैल पर बोझ लादे जा रहा था। बैल ने इसकी तरफ देखा और कहा, मैं इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया हूँ। लोगों ने हैरानगी और घबराहट से सुभान अल्लाह कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इस बात को सच समझता हूँ और इस पर ताज्जुब नहीं करता। अबू बकर और उमर भी इसे सच कहते हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। आपने ये हदीस कभी पहले सुनी? सही मुस्लिम की रिवायत है कि जानवर बोला था और बैल बोला, और उस पर जब बंदा बोझ डाल रहा है तो खीर उसको अल्लाह ने ज़ुबान दी। ये भी अल्लाह के नबी के मौजज़ात में से। इसी तरह एक पहाड़ ने अल्लाह के नबी से बात की थी। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी पहले खजूर के एक तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते थे, फिर जब मिंबर बन गया तो आप वहाँ जा कर खुतबा देने लगे तो उस खजूर के तने में से बच्चे के रोने की आवाज़ें आईं। फिर आप अपनी जगह से उतरे, आपने जाकर वहाँ अपने लब मुबारक लगाए, कुछ देर खड़े रहे, फिर वापस आए तो आपने फरमाया कि ये खजूर का तना आज रो रहा था कि कल तक मुझसे टेक लगा कर अल्लाह का रसूल अल्लाह की बात पहुँचाता था, तो आज मैं महरूम रह गया हूँ। आप ज़रा अपने ऊपर लें। बेजान चीज़ों को इस चीज़ की खुशी है कि वहाँ अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का नाम लिया जाए, और उससे महरूमी पे वो रोएं। तो हम इंसान पत्थर के तो नहीं हैं। हम नेकी का कोई काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो क्या ये हमारे हक में खैर की बात है? इसलिए इस अमल की बात से लीजिए कि अगर कभी अल्लाह सुब्हान तआला मौका दे दे नेकी का, तो फिर उसको ज़ाया नहीं करना। क़यामत के करीब दरिंदे और बेजान चीज़ें कलाम करेंगी। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक दरिंदे इंसानों से बात ना करें, आदमी की छड़ी का छिलका इससे बात ना करें, आदमी के जूते का तस्मा इससे बात ना करें, और आदमी की रान इसे बता ना दे कि इसकी बीवी ने इसकी अदम मौजूदगी में क्या कुछ किया है। तिर्मिज़ी की रिवायत है। कितनी ख़तरनाक बात है। अब देखिए, आप बैठे हैं, एकदम ये जग बोलने लग जाए, हाँ, आप किचन में आए तो फ्रिज बोलने लगे, बच्चों ने ये किया वो किया, आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी की सीट बोलने लग जाए, टेप रिकॉर्डर बोलने लग जाए, कितना हमें खौफ आएगा। और आप देखिए कि हमारा ईमान है कैसा होगा। चाहे अब आपके यहाँ कैसी इन्वेंशन हो जाएंगी कि बेजैन चीज़ों को बुलाएं, कुछ भी हो, लेकिन ये सब कुछ होगा। अल्लाह ताला हमें रसवाई से बचा दे। फिर इस तरह एक ऊँट ने भी अल्लाह के नबी से अपने मालिक की शिकायत की थी, जो उसके ऊपर वज़न बहुत डालता था। इसी तरह अगली चीज़, औरतों की कसरत और मर्दों की किल्लत। कसरत उन्निसाई व किल्लत उर्रिजाली, औरतों की कसरत और मर्दों की किल्लत हो जाएगी क़यामत के करीब। क़यामत से कबल औरतों की इतनी कसरत होगी कि 40-40, 50-50 औरतों की किफालत के लिए सिर्फ एक मर्द होगा। और आपको पता कैसा कब होगा, क्यों होगा? मर्द जंगों में मारे जाएंगे। आज भी जिन मुल्कों में आप देखिए लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ मर्दों के मर्द ऐसे ख़त्म हो रहे हैं। तो औरतें चूँकि घरों में रहती हैं तो वो बच ही जाती हैं। तो फिर सारे कि एक मर्द है, उसके ज़िम्मे उसकी बीवी, बहन, बेटी, भांजियाँ, भतीजियाँ, और कितनी औरतें आ सकती हैं। और ये वक्त आने वाला है। हज़रत मूसा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी सोने का सदका लेकर निकलेगा, लेकिन इसे कबूल करने वाला कोई ना होगा, और एक एक मर्द के साथ साथ 40-40 औरतें होंगी जो इसकी पनाह हासिल करेंगी। ये मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत के सबब से होगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह बुखारी की रिवायत है, हज़रत अनस से कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इल्म का उठ जाना, जिहालत का आम हो जाना, कसरत ज़िना, कसरत शराब नोशी, मर्दों की कमी और औरतों की कसरत, हत्ता के 50 औरतों का कफील सिर्फ एक मर्द होगा। ये सब क़यामत की अलामतें हैं। बुखारी की ये रिवायत है। जितना कुछ भी हमने पढ़ा, इस पे कोई बात कीजिए, कोई सवाल, कोई बात, कोई कमेंट। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे ये सब को नबी सल्लम की सच्चाई की भी तो दलील है ना। हमें इस पे भी तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसा प्यारा नबी दिया कि जो हमारी इन सारी बातों को वक्त से पहले हमसे शेयर कर रहा है, ताकि हम इससे बच सकें और इलाज करें।
80% मुझे लगता है कि ये वाले अलामत की सूरत आ चुकी है, और जब कोई आती है कि जो नहीं अभी लगता है कि आई है, तो दिल में होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं है, ये वाली मैं पूछना चाहती थी कि ये वाली हो चुकी है या नहीं, कि सरजमीने अरब में कोई
नहर, यानी इसके
नहीं
असबाब शुरू हो गए, लोगों ने इसके लिए आर्टिफिशियल सिस्टम किया है समंदर के पानी को ले गए, लेकिन अभी इसकी लगता है कि आने वाले दौर में इधर होगी। इसको आप इस एंगल से समझें, अगर आप दुबई गए हैं और आप में से कोई पुराना दुबई जानता है, तो वीरान बंजर था, आप देखिए कि वहाँ इमारतें और ग्रीनरी, चाहे आर्टिफिशियल घास है कुछ है, लेकिन यानी खूबसूरती से खूबसूरती आ रही है। तो अल्लाह आलम ये अभी क्या कैफियत है, किस तरह से होगी, लेकिन असरात तो शुरू हो गए ना। जजाकल्ला खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।